السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عالم برزخ میں ہمارا سفر آج ہم چل رہے ہیں, اور کل جو ہم نے منظر دیکھا, ایک گروہ ہے وہ تپش محسوس کر رہا ہے. تو آج ہم چلتے میں کچھ اپنے اندر کمزوری محسوس کر رہے ہیں, تھکاوٹ کا احساس ہو رہا ہے, اور اپنے آپ کو ہم بیمار محسوس کر رہے ہیں. تو ہم نے اپنے علم دوست سے کہا کہ اب ہمیں چلنے کی طاقت نہیں ہے, یعنی ہم اپنے آپ کو بیمار سمجھ رہے ہیں. اچھا ذرا میں یہاں رک جاؤں, میں روزانہ بھول جاتی ہوں بتانا کہ یہ جو ہمارے گروپس ہیں, گروپ 1 یعنی درسگاہ اہل بیت, گروپ 1, 2, 3, 4, 5, 6 یہ سیم گروپس ہیں. تو میں دیکھ رہی تھی خواتین ادھر بھی ایڈ ہو رہی ہیں, پھر یہاں سے لیفٹ ہو رہی ہیں, پھر دوسرے گروپ پہ ایڈ ہو رہی ہیں. سیم گروپ ہیں یہ, آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے سیم ہی آپ کو لیکچر سنیں گے. تو ہم نے جو ہے اپنا سفر شروع کیا, اور ہم نے بتایا کہ ہمیں کچھ بیماری سی محسوس ہو رہی ہے, کچھ ہمیں جو ہے تھکاوٹ لگ رہی ہے. تو ہم نے اپنے علم دوست سے کہا کہ ہم جو ہیں اب بیمار اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں. تو ہمارے علم دوست نے کہا کہ ہاں, اب اس وقت جو ہے تم جو ہو بیمار ہو, تمہاری روح جو ہے وہ بیمار ہے. ہم نے کہا ہمارا جسم تو ہم نے دیکھا تھا کہ جمعے کے غسل کی وجہ سے اور بھی جو ہماری نیکیاں تھیں کہ وہ سیدھا نہیں تھا, جسم صحیح تھا. تو یہاں ہمیں کیوں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم بیمار ہو رہے ہیں؟ تو ہمارے علم دوست نے کہا کہ وہ اس وجہ سے کہ دنیا میں ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جو روح کو بیمار کرتے ہیں, کچھ گناہ ہوتے ہیں جیسے جسم کو بیمار کرتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں روح کو بیمار کرتے ہیں, اور وہ ہوتے ہیں روحانی گناہ. کیونکہ یہاں پہ تعلق جو ہے وہ روح کا ہے, تو یہاں پہ تمہاری روح جو ہے وہ بیمار ہو رہی ہے. تو ہم تھوڑا سا پریشان ہو گئے, اور ہم نے کہا کہ اگر ہم یہاں یہاں پہ بیمار ہوں گے اور پریشان ہوں گے, تو یہاں تو طبیب بھی نہیں ہے. وہاں تو ہم اگر دنیا میں جسمانی طور پہ بیمار ہوتے تھے تو فوراً ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے تھے, اور خدا ہمیں شفا دیتا تھا ڈاکٹر کے ذریعے. تو ہم خوفزدہ ہونے لگے, پریشان ہونے لگے. ہم نے اپنے علم دوست سے کہا کہ ہمیں بتاؤ کہ کیا ایسے جو ہے وہاں پہ مرض تھے کہ جو ہماری روح کو لگے اور اس نے ہمیں بیمار کر دیا, کیونکہ اب بالکل ہمارے اندر طاقت نہیں ہے چلنے کی, اور ہم ایک جگہ پر اب بیٹھ گئے ہیں کہ اب ہم سے چلا بھی نہیں جا رہا. یعنی اتنی شدت لگ رہی ہے, کیفیت ہو رہی ہے جیسے انسان کو بخار میں ویکنیس ہونے لگتی ہے, اب وہ حالت ہو رہی تھی. تو ہمارے علم دوست نے کہا کہ وہ گناہ جو تھے وہ اس طرح کے تھے کہ چغل خوری, غیبت, جھوٹ, قطع رحمی, میوزک سننا, شادیوں میں جو ہے وہ سچ کے سنور کے جانا, جبکہ قرآن کی آیتیں موجود تھیں کہ اپنا بناؤ سنگھار دکھاتی نہ پھرو, ایماندار عورتوں کو مخاطب کیا گیا. تم نے اس وقت شاید توجہ نہیں کی کہ تم ایماندار ہو یا نہیں ہو کہ خدا مخاطب کر رہا ہے. تم قرآن کے گروپس پہ تھیں, رمضان میں قرآن پڑھے, تلاوت کی, گروپس پہ پڑھے, کبھی توجہ نہیں کی کہ احکام کیا ہیں, کہ مجھے اس سے کیا فائدہ حاصل کرنا ہے, کہ خدا کا وہاں پہ حکم تھا کہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کرتی پھرو, اور باقاعدہ سچ کے اور صبر کے گھر سے نکلتی تھیں شادیوں میں اور کہیں پہ بھی پروگرامز میں. تو ہم نے جیسے ہی سنا ہم تو اور بالکل ہی جو ہے سمجھے ختم ہونے والی کیفیت میں آ گئے, کہ ہم کھڑے تھے کھڑے سے بیٹھ گئے, کہ اب جو ہمارے سامنے پوری ایک پکچر چلنی شروع ہو گئی جیسے ایک فلم ہوتی ہے, اور بس اب تو ہم کیا کریں, کیونکہ یہاں پہ توبہ ہم کر نہیں سکتے, توبہ کام نہیں آئے گی, خدا سے معافی نہیں مانگ سکتے, جو بھی تھا دنیا سے کر کے آنا تھا. تو ہم نے اپنے علم دوست کی طرف بڑی حسرت سے دیکھا کہ تم ہماری ہر جگہ رہنمائی کرتے رہے, یقیناً تم نے دنیا میں ہماری رہنمائی کی ہوگی. اس نے کہا بالکل, کیونکہ میں نے تم سے دوستی کی اور میں نے تمہاری رہنمائی کی, میں نے ہر وقت موقع پہ تمہیں بتایا کہ یہ غلط ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے, غیبت نہیں کرنی ہے, چغل خوری نہیں کرنی ہے. تو ہم نے اسے وہیں پہ روکا کہ دیکھو چغل خوری کا معاملہ کیا, کہ ہم کبھی کسی کی مدد کے لیے کسی کی بات کسی کو بتاتے تھے کہ وہ تمہارے لیے یہ خیالات رکھتا ہے, اس سے بچ کے رہو. تو اس نے کہا یہی وہ بیج تھا کہ جو تم نے دو مومنوں کے بیچ میں بو دیا, तुम्हारी वजह से उनके दिल ख़राब हो गए। मैंने तुम्हारी रहनुमाई की थी कि दो दिलों को जोड़ना, आपस में मिलाना ऐसा है कि जैसे शबे कदर में पूरी रात इंसान जागे और उसको दर्क कर ले, यानी हासिल कर ले जो कुछ शबे कदर में खुदा नाजिल कर रहा है। मगर तुम तवज्जो ना कर सकी, तुम थोड़ा गफलत में चली गई। फिर झूठ भी के मामलात और हालात में बोले गए, जबकि तोरिया करने का मैंने तुम्हें सिखाया था, हमारे इन दोस्त ने कहा कि तोरिया करना मैंने तुम्हें सिखाया था। हमें याद आया कि हाँ, हमें इल्म था, हमने उलमाए कराम से सुना हुआ था, ये मसला है फिक्र का कि झूठ से किस तरह बचा जाए, कि ऐसी बात की जाए कि सामने वाले समझे कि वो झूठ भी नहीं है और आप अपनी बात भी कह दें। तो हमने उसने कहा कि तुम्हें याद है, तो हमने कहा हाँ हमें याद है कि हमने ये इल्म हासिल किया था। और एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि हम किसी के घर जाना चाह रहे थे और नहीं गए किसी वजह से, और जब उन्होंने हमसे पूछा और हमें मालूम था ये हमसे पूछेंगी कि आप क्यों नहीं आए, हमारे यहाँ फला नियाज थी या कोई काम था, तो हमने पहले ही सेट किया हुआ था कि हम तौरिया करेंगे। और हम कभी अपने वालदेन के घर गए थे तो हमने कहा हम अपनी अम्मी के घर चले गए थे, भले ही हम एक हफ्ते पहले गए थे, एक महीने पहले गए थे, मगर हमने ऐसा कह दिया था। तो वो झूठ भी नहीं हुआ, सामने वाला समझ गया कि ये सही कह रही हैं। तो हमारा इल्म दोस्त मुस्कुराया कि तुम्हें ऐसी बहुत सी मिसालें दी गई थी कि झूठ से बच जाना। वो हमें बताता जा रहा और हमें हमारी हालत जो है गैर हो रही कि हमने इल्म हासिल किया और फिर क्या करा, हमने तवज्जो क्यों नहीं की, गाफिल क्यों हो गए। गीबतें भी हो गई, किसी की कोई बात बुरी लगी, कोई चीज़ बुरी लगी, तो उसने कहा कि क्यों नहीं तुम जब उस मौके पे थी, मैंने तुम्हारी वहाँ रहनुमाई की कि मौजू को बदल दो, बात को घुमा दो, जैसे कहते हैं ना, मौजू चेंज कर दो कि जिसकी गीबत हो रही है वो उस वक्त मज़लूम है, वो वहाँ मौजूद ही नहीं है कि वो अपने बारे में कोई सफाई पेश कर सके, उस पर कोई तोहमत भी लग जाए, इल्ज़ाम भी लग जाए, गीबत तो हो रही है। और भारत तोहमत और उसका तो हम एक अलग बताएंगे कि उस घाटी पे कितनी तकलीफ़ होगी कि तोहमत लगाने पे। तो बहरहाल अब ये हम सुन रहे थे तो हमने कहा कि अब तो हम बहुत परेशान हो रहे हैं कि अब तुम क्या हमारी यहाँ मदद नहीं करोगे, तुमने दुनिया में की। तो उसने कहा कि अगर तुमने मेरे साथ साथ एक और दोस्त भी बनाया होता तो यकीनन तुम्हारी मदद हो जाती। तो हम थोड़ा सा रिलैक्स हुए कि कोई ऐसा मौजूद होगा यकीनन कि हमने वहाँ दोस्ती की होगी। हमने कहा कि कौन सा दोस्त होना चाहिए जो इस वक्त मदद करे, तो उसने कहा अमल। एक मैं तुम्हारा दोस्त इल्म, एक तुम्हारे साथ दोस्त अमल था। जब भी मैंने तुम्हें कोई इल्म की बात बताई तुमने फौरन उस पर कहा लब्बैक, मतलब तुमने कहा कि हाँ मैंने सुना, मैंने समझा, और फिर तुमने अमल को दोस्त बनाया कि अब मैं अमल करती हूँ। खुदा ने तुम्हारे लिए वो काम आसान किया, खुदा ने तुम्हारी कोशिश को देखा और तुम्हें आगे की तरफ लेके गए। क्या तुमने अमल से दोस्ती की? तो बिल्कुल हमें याद आया कि हाँ, कभी ऐसा होता था कि हम अमल को नाराज़ भी कर देते थे मगर अपनी कोशिश करते थे। तो हमने कहा बिल्कुल हमारे पास अमल की दोस्ती है, हमारे पास बहुत सी चीज़ों के हल हैं। तो इन दोस्त मुस्कुराया कि बिल्कुल, क्योंकि जब तुम अमल को नाराज़ करते थे तो मैं तुम्हारी रहनुमाई करता था, वहाँ पे बताता था कि देखो अगेन तौबा का दर खुला है, खुदा से तौबा कर लो कि मैं अब आइंदा नहीं करूँगी। तो हमने कहा बिल्कुल, जब हमने अमल से दोस्ती की तो हमने अमल करने की कोशिश भी शुरू की कि झूठ से, गीबत से, चुगलखोरी से, कतअ रहमी से बचे। तो उसने कहा कि मैंने तुम्हारी रहनुमाई की कि तौबा का दर खुला है, सच्चे दिल से खुदा से तौबा करो, जिसकी गीबत की है उसके नामा आमाल में, उसके आखरत के नामा आमाल में दुरूद, अस्तगफार, कोई सूरा, जो भी हसब हैसियत है उसके आखरत बॉक्स में डालो कि मैंने जिसकी गीबत की खुदा ये उसके नामा आमाल में जाए और मेरे नामा आमाल से कुछ ख़त्म ना हो। क्योंकि जब गीबत की जाती है तो हमारी जो नेकियां होती हैं जिसकी हम गीबत करते हैं उसके नामा आमाल में चली जाती हैं, बग़ैर मेहनत के उसे बहुत कुछ हासिल हो जाता है। आज हम देखते हैं ना कि हम लोगों पे तनकीद करते हैं, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो इस तरह का है, वो बेनमाजी है, बहुत गुनहगार है। हम ये नहीं समझते हैं कि उस वो जो भी गुनाह कर रहा है वो हमारी नेकियां उसके नामे अमाल में बैठे बैठे जा रही हैं, वो तो कोई मेहनत भी नहीं कर रहा, और हमारे नामे अमाल से हट रही हैं और उसकी बुराइयां हमारे नामे अमाल में आ रही हैं। तो उसके लिए तो बड़ा अच्छा हो गया। तो हमारे इल्म दोस्त ने कहा कि हमेशा मैंने तुम्हारी रहनुमाई की और तुमने अमल से दोस्ती की, तुमने फ़ौरन अमल किया, तौबा की, दुरूद इस्तग़फ़ार उसको हदिया किया कि खुदा मेरे नामे अमाल से कुछ माइनस ना कर, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से जमा किया है और कुछ नहीं मालूम तू मेरी किस चीज़ को कबूल करेगा, किस चीज़ को रद्द कर देगा, उसमें भी कमी होने लगेगी तो मेरा तो ख़ज़ाना जो है वो खाली हो जाएगा जो मैं यहाँ से दुनिया से लेके आई हूँ। तो तुमने अमल किया, तौबा इस्तग़फ़ार की, गीबत से बचने की कोशिश की, जिसकी गीबत की उसके लिए कुछ कर दिया, झूठ से तौबा की, तौरिया को सीखने की कोशिश की कि ऐसा मामला के सामने वाला, जैसे एक मिसाल यहाँ पे ज़िमनन समझा दी जाए कि जैसे कभी हम बिज़ी होते हैं, किचन में हैं, कुकिंग में हैं, किसी की कॉल आ रही है और हमारे बच्चे रिसीव कर लेते हैं तो वो हमें बताते हैं कि फला कॉल आ रही है, तो हम उनसे कहते हैं कि अभी कह दो मम्मा बिज़ी हैं, तो ये झूठ नहीं होगा। मगर कभी ऐसा होता है कि तौरिया का मसला आ जाए, हमें पता है सामने वाला नाराज़ हो जाएगा कि हमने कहा हम बिज़ी हैं, अभी बात नहीं करना चाह रहे, या कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी पर्सनैलिटी की कॉल हो कि हम फ़िलहाल चाह रहे हैं कि हम रिसीव ना करें, अभी ना करें, भले ही बाद में कर लेंगे मगर अभी हम करेंगे तो बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा। तो हमने जैसे ही हमारे बच्चे ने कहा कि फ़लाँ की कॉल है, तो हमने कहा कि उसे कहो कि मम्मा घर में नहीं है, और हम जो हैं बैल्कनी में चले गए, अपने घर के सहन में चले गए, यानी घर से बाहर चले गए थोड़ी देर के लिए, और बच्चे ने इतनी देर में वहाँ पे हमारा मैसेज बता दिया कि मम्मा घर पे नहीं है, आएंगी तो मैं आपका मैसेज दे दूँगा और कॉल बैक कर लेंगे। तो ये तौरिया की एक आध मिसाल थी, उम्मीद है समझ में आएगी। तो अब ये जो हम ये बीमारी हमारे ऊपर आई और हम बीमार हो गए इन मामलों से, और जैसे ही हमने ये रिकॉल किया कि हमारा अमल दोस्त है, हमने उसको पुकारा कि हम अमल की तरफ थे, हमने तौबा की, शादियों में अगर हम बेहिजाब गए, बहुत मेकअप हैवी कर करके गए, कोशिश नहीं की कि कम से कम करने पे आते आते आएं, और फिर बिल्कुल ही ऐसा हो जाए कि मिक्स गैदरिंग में अगर जाना भी पड़े मजबूरी में तो किसी एक साइड पे बैठ जाएं, ज़्यादा उस महफिल का हिस्सा ना बने कि जहाँ पे ये गुनाह के काम हो रहे हों। तो हमने अमल से दोस्ती की थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब इस सफ़र में इल्म और अमल दो साथी हमारे साथ हो गए। तो बस आज का सफ़र यहीं तक कि इल्म से भी दोस्ती, अमल से भी दोस्ती, और ये दोनों ऐसे समझें अपनी ज़बान में कहें कि जिगरी दोस्त हैं कि छोड़ते नहीं हैं, इल्म मालूम हो और इंसान अमल करने लगे उसका बेड़ा पार हो जाता है।